हेलो स्टूडेंट्स, आज के हमारे ई लेक्चर का टॉपिक है एमिल नोल्डे। चित्रकार एमिल नोल्डे का जन्म 7 अगस्त 1967 में डेनमार्क में हुआ था और मृत्यु 13 अप्रैल 1956 में जर्मनी में हुई। ये एक जर्मन डेनिश चित्रकार एवं प्रिंट मेकर थे। आप अपने ब्रश आघात यानी कि ब्रश स्ट्रोक के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। नोल्डे ने कला में विशुद्ध मूल रंगों को क्रियान्वित किया है। रंगों के इस सामर्थ्य का साक्षात्कार उनको संदिग्ध मानसिक अवस्था में हुआ। इस मानसिक प्रक्रिया में उनको कठिनाई व संघर्षों से सामना करना पड़ा। 1898 में उन्होंने होलसेल, जो स्वयं विशुद्ध रंगों वे सरलीकृत आकारों के कलात्मक सामर्थ्य के बारे में शोध कर रहे थे, के मार्गदर्शन में कला की शिक्षा प्राप्त की। इस समय उन पर डाको चित्रकारों का प्रभाव था। 1906 में ब्यूके चित्रकारों ने नोल्डे को आमंत्रित किया। वे एक साल तक वे उस मंडल के सदस्य रहे। उनका 1906 में मुंक से वे 1911 में एंसोर से परिचय हुआ, किंतु इन संपर्कों के बावजूद उनकी कला का मौलिक व एकांत स्वरूप अबाधित रहा, मतलब वैसा का वैसा ही रहा। आरंभिक काल में रेम्ब्रॉन्ट, गोया व दामिये नोल्डे के आदर्श चित्रकार थे। वे इन चित्रकारों की कला में मनोवैज्ञानिक सामर्थ्य व अभिव्यक्ति से वे प्रभावित थे। बचपन के चित्रों में भी नोल्डे चित्र विषय की स्वाभाविक विशेषताओं पर बल देकर चित्रण करते। कला की शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात वे सेंट गेल के औद्योगिक डिजाइन विद्यालय में अध्यापक रहे। इस काल में उन्होंने किसान के कई चित्र बनाए, जिसमें सादृश्य के अतिरिक्त किसानों की ऐठनदार उबड़ खाबड़ शरीर आकृतियों को अतिशयोक्ति अति मानवीय रूप में चित्रित किया। शायद ये उनका प्रभाव बचपन से ही था, क्योंकि वो उनका जन्म ऐसी जगह हुआ जहाँ पर फार्म ही थे, फार्म हाउस थे। इन चित्रों को हम व्यंग चित्रों में शामिल नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें शरीर की अपेक्षा आंतरिक स्वभाव विशेषताओं की अभिव्यक्ति पर बल दिया है। 1896 में बनाए उनके रेखा चित्रों, गुफा निवासी स्त्री, आलसी, सामर्थ्य का नकाब वगैरह में भी शारीरिक की अपेक्षा आत्मिक गुणों का दर्शन अधिक महत्वपूर्ण व प्रभावशाली है। 1884 में चित्रित किए प्रकृति दृश्यों में पौराणिक कल्पनावाद है। स्विट्जरलैंड के पहाड़ों को काल्पनिक मानव रूप में चित्रित कर शीर्षकों द्वारा कल्पना को स्पष्ट किया, जैसे कि युवती, भिक्षु, जंगली वगैरह। इन चित्रों में उन्होंने वहां के निवासियों की उन पहाड़ों के बारे में प्रचलित कल्पनाओं को साकार किया है। 1900 में जब वे पेरिस गए, तब माने के रंगांकन की विशुद्धता व दोमिये की अभिव्यंजनात्मकता शैली से वे प्रभावित हुए। 1906 में संग्रहालय ओस्टोस ने नोल्डे को वॉनगो, गॉव, मोने व समकालीन फ्रेंच चित्रकारों की कृतियां दिखाई, जिससे प्रेरणा पाकर वे विशुद्ध रंगों में चित्रित करने की दिशा में आत्मविश्वास के साथ अग्रसित हुए। उन्होंने फूलों, बगीचों के चमकीले रंग संगति के चित्र बनाए, जिनमें उनके मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण की झलक भी स्पष्ट रूप से प्रतीत होती है। मुंक, वॉनगो व एंसोर की कलाकृतियों में उन्होंने अभिव्यक्ति की समानता को अनुभव किया। वे उनके निजी अभिव्यक्ति को सुदृढ़ व परिणामकारक बनाने में उनको सहायता मिली। नोल्डे की कला में मानवीय जीवन की आदिम प्रेरणाओं को धार्मिक निष्ठा के साथ चित्रित किया है। 1909 से लेकर 1911 तक उन्होंने इस दर्शन के जो चित्र बनाए, उनमें अंतिम भोजन, साक्षात्कार आदि ईसा के जीवन के चित्र प्रसिद्ध हैं। इसके पश्चात उन्होंने मानव चित्रण किया, जिसमें मानव आकृतियों को उन्होंने स्वाभाविकता का स्वाभाविकता के साथ प्रतीकात्मक रंगों का प्रयोग करके चित्रित किया। मुक्त तूलिका संचालन फ्री हैंड स्ट्रोक्स, वे गतिपूर्ण वक्र रेखाओं से चित्र सचेत बन गए हैं। नोल्डे की कला निसर्ग के विरोधी नहीं है, मतलब यथार्थ जो दिखता है वो ही बनाने के विरोधी नहीं है, किंतु उनमें निसर्ग के बाह्य रूप का चित्रण नहीं बल्कि उसकी आंतरिक प्रेरणाओं को कलात्मक अनुभूति द्वारा माध्यम का सचेत प्रयोग करके समरूप से चित्रित किया है, जिससे दर्शक जीवन की आधारभूत प्रेरणाओं के अस्तित्व को स्वयं अनुभव कर लेता है। इस संबंध में वेनेर हाफ्टमैन ने लिखा है, नोल्डे के लिए वही सत्य है जो दृश्य वास्तविकता के पीछे छिपकर उसके द्वारा निजी अस्तित्व का साक्षात्कार कराता है। मनुष्य की कल्पना में ही निसर्ग को अर्थ प्राप्त होता है। नोल्डे की कला में मानवीय आदिम प्रेरणाओं का साकार दर्शन है, वे इसी कारण के लिए उनको पाताल लोक का देवता कहते हैं और नोल्डे क्ले को तारों भरे विश्व मंडल में उड़ने वाली तितली कहते हैं, क्योंकि क्ले के चित्रों द्वारा दर्शक परिकथा के समान काल्पनिक व स्वप्निल दुनिया में प्रवेश पाते हैं। बाह्य दर्शन में भिन्नता होते हुए नोल्डे व क्ले दोनों ने मानव के आंतरिक जीवन को ही चित्रित किया है। नोल्डे की कला के विरोध में मातिस की कला की तुलना की जा सकती है, जिसमें बाह्य सौंदर्य व रचना के अतिरिक्त कोई आंतरिक गुण नहीं है, वह जो सर्वसाधारण रूप से फ्रेंच कला की विशेषता रही है। 1912 में नोल्डे ने पुनरुत्थान, सपत्नीक सैनिक, ईसा के जीवन पर नौ वेदी चित्र व संता मारिया इजिप्शिया का कव त्रिपट बनाए। अपने चित्रकारी जीवन में उन्होंने पेरिस, लंदन, जापान तथा चीन आदि विदेशों की यात्राएं भी की। तो स्टूडेंट, यहाँ आपका ये आर्टिस्ट नोल्डे समाप्त होता है। अब आप लोग सब नोल्डे के चित्रों को देखकर उनका एनालिसिस कीजिए और डिटेल में उसके बारे में लिखिए, और जो कोई आपको प्रॉब्लम है तो वो आप मुझे फोन करके पूछ सकते हैं। थैंक यू बच्चों।